आज है अप्रैल महीने की 8 तारीख दिन रविवार। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत।
Confirming the 70 killed, giving us symptoms of what the victims suffered from.
दिल्ली से काठमांडू तक चलेगी सीधी ट्रेन। दोनों देशों के बीच समझौते पर दस्तखत। बीएसपी नेता मायावती ने बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताया।
बीजेपी के केंद्र व राज्य सरकारों ने पुलिस व सरकारी आतंक का तांडव अब इन वर्गों के प्रति हर तरफ शुरू कर दिया है।
और सुनिए,
इधर सम्मान से देखा जाता है, किधर जाओ वुमेन को रिस्पेक्ट देते हैं।
रिस्पेक्ट है,
परवरिश भी, परवरिश ऐसा है, बेटियों को ऐसे ही परवरिश देते हैं ना।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दाश से। सीरिया के विद्रोही के कब्जे वाले डूमा शहर में संदिग्ध जहरीली गैस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना की जा रही है। इस हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन ने चिंता जताई है और कहा है कि तुरंत इसकी जांच की जानी चाहिए। अमेरिका का कहना है कि अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो सीरियाई सरकार के समर्थक रूस को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने भी मानव जाति के खिलाफ इस तरह के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की आलोचना की है। इस मामले में सीरियाई सरकार और रूस ने खुद पर लग रहे आरोपों से इनकार किया है। जर्मनी में अधिकारियों का कहना है कि मीनस्टर शहर में पैदल चल रहे कुछ लोगों को वैन से कुचलने वाले व्यक्ति के इस्लामी चरमपंथियों से कोई तार नहीं जुड़े हुए हैं। बीते कल हुए इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। बताया जा रहा है कि वैन के ड्राइवर जर्मनी के ही नागरिक थे और उन्होंने मौके पर खुद को गोली मार ली थी। वो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे थे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्कल ने कहा है कि वो इस हादसे से सदमे में हैं। मिंस्टर में अपने परिवार के साथ रहने वाली कोरेना ब्रुकेनर कहती हैं, मैं और मेरा पूरा परिवार अभी भी सदमे में है। हम दुखी हैं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। वो शहर गई थी और हादसा जहां हुआ वो उस जगह के करीब ही थी। पूरे शहर की सड़कें अब खाली हो चुके हैं। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। लोग आपस में बातें ज़रूर कर रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि हम इसका सामना कैसे करें और मुझे लगता है कि मिंस्टर वासियों के जख्म भर जाएंगे। मिंस्टर में रहने वाली कोरेना ब्रुकेनर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पश्चिमी जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा बम, माफ कीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए एक बड़े बम को नाकाम करने के लिए अधिकारियों ने खास अभियान शुरू कर दिया है। इसके लिए पश्चिमी जर्मनी के शहर से 26,000 से अधिक लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। ये 1.5 टन का ब्रिटानी बम है जो करीब सप्ताह भर पहले पेडरबॉर्न के एक घर के बगीचे में जमीन के नीचे दबा मिला। अधिकारियों ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को घर खाली करने के लिए कहा है। इलाके में मौजूद अस्पताल और वृद्धाश्रम भी खाली कराए गए हैं। हंगरी में लाखों की संख्या में मतदाता आम चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री विक्टर ओरबोन एक बार फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी कर सकते हैं और ऐसा हुआ तो वो लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व करेंगे। उनकी वामपंथी राष्ट्रीय फिजेट पार्टी ने अपने चुनावी अभियान में वादा किया है कि वो देश में मुसलमानों को आने देने से संबंधित अपने कठोर नीतियों पर कायम रहेंगे। बुडापेस्ट में रहने वाली ईवा हेजेस चुनावों में मतदान करने वाली हैं। वो कहती हैं, इस चुनाव में काफी कुछ दांव पर लगा है। या तो हम ऐसा देश बन जाएंगे जहां अप्रवासियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी या फिर हम एक आज़ाद मुल्क ही रह पाएंगे या फिर हमें शायद आज़ाद रहने के लिए अपनी लड़ाई जारी करनी होगी। बुडापेस्ट में रहने वाली ईवा हेजेस के शब्द। दक्षिणी घाना में सोने की एक खदान की छत के धंसने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 2 मजदूर घायल हो गए हैं। अमरीकी कंपनी न्यूमोंट ने कहा है कि इस मामले की जांच चल रही है और जांच के पूरे होने तक खदान में काम रोक दिया गया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। सीरिया में राहत और स्वास्थ्य कर्मियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक इलाके में संदिग्ध रासायनिक हमले की वजह से कम 70 लोग मारे गए हैं। सीरिया के मुख्य सहयोगी रूस ने इसे पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप बताया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि सीरिया का बचाव करके रूस कथित हमलों की खुद जिम्मेदारी ले रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए वात्सल्य राय से।
70 लोगों का दम घुट गया और कई दूसरे लोगों का दम घुट रहा है। ये जानकारी स्वयंसेवी समूह व्हाइट हेलमेट्स के प्रमुख रात अल सालेह ने सीरिया में पूर्वी गुटा के डूमा में हुए कथित रासायनिक हमले के बारे में दी। व्हाइट हेलमेट्स ने ट्विटर पर ग्राफिक तस्वीरें जारी की हैं। एक तहखाने में कई शव नजर आ रहे हैं, इनमें से कई शव महिलाओं और बच्चों के हैं। व्हाइट हेलमेट्स का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। सीरिया के लोगों की मानवीय मदद करने वाले स्वयंसेवी समूहों के गठबंधन की नजाह अलूश के मुताबिक हमले की जानकारी दमिश्क रूरल हॉस्पिटल से मिली है।
We have a press release from them that they sent out confirming the 70 killed.
हमें उनकी ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति मिली है जिसमें 70 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। हमें पीड़ितों के लक्षण की भी जानकारी दी गई है और घायलों के बारे में भी सूचित किया गया है। कम से कम 500 लोग घायल हैं। ये संख्या बढ़ भी सकती है। अब भी कई लोग घरों में फंसे हुए हैं, इनमें से कई की मौत हो चुकी है।
ये थे नजा अलूश के शब्द। राहत में लगे लोग और स्वास्थ्य कर्मी भी हमले के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक ट्वीट में मरने वालों की संख्या 150 बताई गई थी, बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। हालांकि इन रिपोर्टों की किसी स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। रेड क्रॉस के प्रवक्ता मैथ्यू मॉरिस ने कहा कि वो हमले की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकते हैं।
We've been seeing the pictures and the videos and hearing the reports. We can't be clear on exactly what's happened. We're not able to.
हमने तस्वीरें और वीडियो देखे हैं और रिपोर्टों को सुन रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ये साफ नहीं है कि क्या हुआ है। हम स्वतंत्र तौर पर इस कथित हमले की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हम पूर्वी गुटा के डूमा में मौजूद नहीं हैं।
ये थे मैथ्यू मॉरिस के शब्द। सीरिया ने रासायनिक हमले के आरोपों को मनगढ़ंत बताया है। वहीं रूस ने भी ऐसे किसी हमले की जानकारी होने से इनकार किया है। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना ने कहा है कि ये रिपोर्टें विद्रोही समूह जैश अल इस्लाम ने गढ़ी हैं। सीरिया की सरकार पर पहले भी रासायनिक हमले के आरोप लगते रहे हैं। इस बार भी डूमा शहर में संदिग्ध रासायनिक हमले की अंतर्राष्ट्रीय जगत ने निंदा की है। अमेरिका और ब्रिटेन ने तुरंत जांच की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि अगर रिपोर्टों की पुष्टि होती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। वहीं अमरीकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि सीरिया सरकार को समर्थन के जरिए रूस पर कथित हमले की जिम्मेदारी बनती है। पोप फ्रांसिस ने भी कथित हमले की निंदा की है।
Giungono dalla Siria notizie terribili di bombardamenti con decine di vittime, di cui molte sono donne.
सीरिया में बम बरसाने की भयावह खबर आई है। कई लोग पीड़ित हैं, इनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। बम में मौजूद रासायनिक तत्वों से कई लोगों के प्रभावित होने की खबर मिली है। हम सभी मरने वालों, घायलों और पीड़ितों के परिजन के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छे संघर्ष और बुरे संघर्ष जैसा कुछ भी नहीं है। कोई भी बात निहत्थे लोगों के खिलाफ हिंसा के ऐसे तरीकों को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि राजनीतिक और सैन्य नेता दूसरा रास्ता चुनें, बातचीत करें जो शांति की ओर ले जा सकती है।
सीरिया के पूर्वी गुटा में डूमा विद्रोहियों के कब्जे वाला आखिरी शहर है। इस शहर की रूस की समर्थन वाली सीरिया सरकार की सेनाओं ने नाकेबंदी की हुई है।
सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रहे थे वात्सल्य राय। श्रोताओं, सब कुछ ठीक रहा तो वो दिन भी आएगा जब आप दिल्ली से ट्रेन में बैठकर काठमांडू तक जाएंगे। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें एक समझौता ये भी है। वैसे कहा जा रहा है कि भारत ऐसा करके नेपाल में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकना चाहता है। चीन की योजना है कि तिब्बत से नेपाल तक रेल लाइन बिछाई जाए। बहरहाल, भारत नेपाल के बीच ताज़ा समझौते के क्या मायने हैं, काठमांडू में वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमेरे से मैंने पहला सवाल यही किया।
जरूर, इस इसमें भारत की जो डिप्लोमेसी है, मीटिंग में जो बात आई शिखर लेवल की मीटिंग में, उसमें एक टैक्टिकल एलिमेंट तो है ही, क्योंकि चीन का प्रभाव जरूर बढ़ रहा है नेपाल में, खास तौर से विगत 3 साल में, और उसी दौरान उसी अनुपात में भारत और नेपाल का संबंध में भी काफी गिरावट आया है। इस पर जितना जल्दी प्रधानमंत्री बनने के तुरंत दो चले गए हैं दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी के इनविटेशन में, मुझे लगता है वो भी दिल्ली की तरफ से वो एक प्रायोरिटी भी रहा है कि नेपाल के साथ संबंध सुधार करें।
ये बताइए, केपी ओली दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, जब वो पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे 2015-16 की बात है, तब भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, उस समय काफी तनाव आ गया था दोनों देशों के संबंधों में, और ये भी कहा जाता था कि केपी ओली का जो झुकाव है वो भारत के मुकाबले चीन की तरफ ज्यादा है, तो क्या अब कुछ उनका झुकाव बदल गया है, रुख बदल गया है इस बार?
अब ये बताना मुश्किल है। ये जरूर है कि जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय नेपाल का संविधान जारी हुआ था और उस पर कुछ रिजर्वेशन था भारत का। भारत ने एक आर्थिक नाकाबंदी लगाया, इसके कारण नेपाल में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना और ओली ने उस सेंटिमेंट के साथ अपने को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में चीन के साथ व्यापार एग्रीमेंट में साइन किया है। इसलिए अब ये जरूर है कि चीन का भी उसी तरह से नेपाल में उपस्थिति बढ़ गया है और जो पूंजी निवेश है वो भी चीन काफी बड़ा स्केल में आया है। चीन बड़ा प्लेयर बन के नेपाल में आया है जो भारत के लिए सिरदर्द है। अब उससे तत्काल नेपाल पीछे हटेगा, पीछे हट सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है।
ये बताइए युवराज घिमेरे कि जो नेपाल का आम आदमी है वो कैसे सोचता है रेल संपर्क को लेकर, चीन की तरफ या भारत की तरफ?
नेपाल और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेपाल में भारत अलोकप्रिय बना है काफी विगत 10-12 साल से, क्योंकि वो नेपाल के राजनीति को, यह एलिगेशन है कि वो माइक्रो मैनेज कर रहा है, उस हस्तक्षेप को नेपाली लोग अच्छा नहीं मानते हैं। दूसरा, जो नाकाबंदी के कारण नेपाल चीन को अप्रोच किया और उससे एक उस समय के कठिन परिस्थिति में सपोर्ट का एश्योरेंस मिल गया। तीसरा, वो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीन भी काफी आगे है। उसने बोला कि तिब्बत से लेकर लुम्बिनी तक वो रेलवे सर्विस को, रेलवे कनेक्शन को ले जाना चाहता है। और हाल ही में नेपाल और चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें नेपाल ने हस्ताक्षर किया, लेकिन भारत के साथ का जो संबंध है, उसका जो आयाम है, उससे बिल्कुल पृथक है चीन के साथ नेपाल का संबंध।
भारत और नेपाल के बीच जो समझौते हुए हैं, वहाँ नेपाल के मीडिया में यह खबर किस तरह, किन शब्दों में छपी है?
नेपाल में थोड़ा ये आशंका है इंडिया के बारे में, दो चीज देखना है जो अभी का विजिट है। एक, वो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कितना विश्वसनीय बन पाएगा, समय सीमा के अंदर कर पाएंगे कि नहीं। दूसरा, नेपाल के आंतरिक राजनीति में भारत हस्तक्षेप करना बंद करेगा कि नहीं। और तीसरा, क्या होता है कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है या और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वो 5 साल के प्रोजेक्ट 20 साल तक भी अगर नहीं बन सकता है तो उसके डेवलपमेंट के जो डिविडेंड्स है उससे जनता वंचित रह जाएंगे, इसलिए एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बन जाता है।
भारत नेपाल संबंधों पर ये थे काठमांडू से वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमेरे।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
ऑस्ट्रेलिया में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज 3 और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं। पूरा ब्यौरा गोल्ड कोस्ट से रेहान फजल की जुबानी, कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल रुख कर रहे हैं भारत का, जहां पिछले कुछ दिनों से दलितों के मुद्दे पर राजनीति गरमाई हुई है। भारत बंद के दौरान कथित तौर पर दलितों पर हुए हमले और फिर उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को अपनी ही पार्टी के दलित सांसदों की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी इस मामले में अब उग्र रूप से हमलावर हो गई है। बीएसपी नेता मायावती ने कहा है कि भारत बंद की सफलता से घबराकर बीजेपी सरकार दलितों का उत्पीड़न कर रही है, जबकि बीजेपी ने इसका खंडन करते हुए ऐसे बयानों को अस्तित्व बचाए रखने की कोशिश बताया है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
भारत बंद की व्यापक सफलता और इस दौरान खासकर दलितों व आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश होने की वजह से बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारें इस हद तक दहल गई हैं कि उन्हें ये लगने लगा है कि अब सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है।
बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती कुछ इस अंदाज में एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हुई। उनका आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में दलितों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और इसकी तात्कालिक वजह है 2 अप्रैल को आयोजित भारत बंद।
और इसलिए बीजेपी के केंद्र व राज्य सरकारों ने पुलिस व सरकारी आतंक का तांडव अब इन वर्गों के प्रति हर तरफ शुरू कर दिया है और इस मामले में खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में न केवल हजारों परिवार के लोगों की अंधाधुंध गिरफ्तारी की जा रही है बल्कि असामाजिक व आपराधिक तत्वों को भी इन पर जुल्म जाति व इनकी हत्या तक करने की भी खुली छूट दे दी गई है।
भारत बंद के दौरान उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के बाद खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमे दर्ज किए गए। ये बंद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ बुलाया गया था जिसमें SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक की बात कही गई थी। ये बात सामने आने के बाद मायावती एक बार बैकफुट पर दिखीं कि 2007 में उनकी सरकार ने ही इस तरह का शासनादेश जारी किया था, लेकिन अब दलितों के उत्पीड़न के रूप में उन्हें एक बार फिर मौका मिल गया है। बीजेपी की परेशानी इस मुद्दे पर इसलिए भी बढ़ती दिख रही है क्योंकि दलित उत्पीड़न की बात करके अब तक उसके कई सांसद और विधायक भी बगावती तेवर दिखा चुके हैं। शायद इसीलिए रविवार को बीजेपी ने भी मायावती के आरोप का जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद कौशल किशोर को सौंपी।
तो मायावती जी डरी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी जो है किसी भी कीमत पे जरा से भी डरी हुई नहीं है। वहाँ पर दलितों का जो उत्पीड़न पहले से हो रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोकने का काम कर रही है, उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है। मायावती जी का ये ब्लेम पूरी तरीके से गलत है, झूठा है। मायावती जी का दलित साथ छोड़ रहे हैं और छोड़ दिया है करीब करीब, इसीलिए उनको एक भी पार्लियामेंट की सीट नहीं मिली। इसीलिए लोग विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जो उनकी 80 सीटें थी केवल 19 रह गई। आने वाले समय में लोकसभा में और कितना परसेंटेज वोट उनका गिरेगा इससे डर करके जो उनकी जान ले लेना चाहते थे उस समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने का काम कर रही है। तो वो धोखा देने का काम दलितों का काम कर रही है। बीजेपी तो उन बेचारे लोगों को जिनके साथ अन्याय हुआ दलितों के साथ उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
बीजेपी और BSP के आरोप प्रत्यारोप के बीच BSP को जहां समाजवादी पार्टी का सहयोग मिल रहा है वहीं बीजेपी को कांग्रेस पार्टी के भी आरोपों को झेलना पड़ रहा है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर दलितों पर कथित अत्याचार के विरोध में दिन भर के उपवास का कार्यक्रम रखा है। वहीं बीजेपी की मुश्किलों का ये सिलसिला अब उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली तक पहुंच रहा है जहां पार्टी के सांसद उदित राज भी इस मामले में अब मुखर होने लगे हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और चलिए अब आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा का चुनाव होने वाला है जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसी कर्नाटक राज्य में उडुपी नाम का एक ज़िला है और इस ज़िले की खासियत ये है कि यहां पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद राजनीति में उन्हें वैसा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा जिसकी वो हकदार हैं। BBC संवाददाता सलमान रावी की रिपोर्ट।
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो मन में है विश्वास।
ये उडुपी शहर है जो अरब सागर से लगा हुआ शहर है और आज मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं। यहाँ पर महिला वोटरों की आबादी पुरुषों से ज्यादा है क्योंकि महिलाएं यहाँ पर डोमिनेट करती हैं सोसाइटी को, क्या ये सही है?
मेरा नाम जयश्री कृष्णराज है। पॉपुलेशन तो ज्यादा है, वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में मालूम पड़ता है कि महिलाएं ज्यादा है करके। बाकी टाइम पे साइड में रखते हैं महिलाओं को। रिप्रेजेंटेशन अभी लोकल बॉडीज में ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, जिला पंचायत, इसमें 50% रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है अभी। लेकिन जब MLA स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन आता है उसमें ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। लास्ट टाइम सिर्फ 8 महिलाएं थे हम लोग एक पार्टी में, और दूसरे में भी कम थे, बहुत कम थे। 33%
अभी भी 224 सीटों में से सिर्फ 30 सीटों पर ही महिला।
अभी 30 ने अप्लाई किया है, अभी कितना लोगों को मिलेगा पता नहीं,
पता नहीं है। तो ये तो बहुत ही कम है। तो क्यों, क्या पैसे की वजह से कि नहीं खड़ी होती महिलाएं, क्या रीजन क्या है?
ऐसा कुछ नहीं, हम लोग सोचते आदमी लोग हम लोग को देने को इच्छा नहीं करते, वही सोचते हम लोग।
अच्छा।
बाकी कुछ नहीं है, हम लोग आदमी से कुछ कम नहीं है, ऐसा नहीं है। काम करने से भी इधर भी लोकल में काम करने से भी हम लोग ज्यादा करते, वो लोग से ज्यादा करते हैं। लेकिन अभी तक तक मालूम नहीं पड़ा क्यों ऐसा होता है,
क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, क्यों सीटें नहीं मिलती हैं। क्या यहाँ पर फैमिलीज में और सोसाइटी में महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखा जाता है या नॉर्थ की तरह जिस तरह से भ्रूण हत्या होती है वैसा?
नहीं, नहीं, इधर सम्मान से देखा जाता है, किधर जाओ वुमेन को रिस्पेक्ट देते हैं,
रिस्पेक्ट है,
इधर बहुत सारे रिस्पेक्ट देते हैं।
तो ये रिस्पेक्ट क्यों है, जनसंख्या ज्यादा है या औरतें दबंग है इसलिए?
नहीं नहीं, हमारे बॉर्डर भी ऐसा है, क्या परवरिश भी, परवरिश ऐसा है, बेटियों को ऐसे ही परवरिश देते हैं ना, वो उसको बीबी को ऐसे ही देखते हैं।
अच्छा, वो सम्मान देता है। बेटों को आप सिखाते हैं कि औरतों को कैसे
सम्मान देना चाहिए।
ये माँ लोग सिखाते हैं उन लोगों को, इसका वजह से किधर भी लड़कियों को बहुत इज्जत देते हैं।
लेकिन फिर रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते?
रिप्रेजेंटेशन का बात आता है तो शायद उन लोग सोचते हैं कि विनिंग फैक्टर देखते हैं और पैसे वाले वो भी चाहिए ना आज।
लेकिन ये बताइए कि रिप्रेजेंटेशन का मेन कारण क्या लगता है आपको, कि फाइनेंशियली कमजोर हैं?
शायद वही लग रहा है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो वी विल आल्सो रॉक सोसाइटी,
करेंगे। यहाँ पर जो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन है या नहीं, महिलाओं का दूसरी जगहों पर नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन कैसा है?
महिलाएं पढ़ते हैं और इधर लड़की लोग लड़के से ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, तो क्या है वो इंटरव्यू में वो लोग अच्छे मार्क्स लेते हैं तो उन लोगों को काम भी अच्छा मिलता है।
वाह, तो, ये बहुत अच्छी बात है।
हाँ ज़रूर, अभी सभी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में लड़कियां है, 10th 12th सभी रैंक भी लड़कियों को मिलता है। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, सभी फील्ड में भी इधर का लड़कियां बहुत आगे।
तो सुना आपने कि सारी फील्ड्स में सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, बल्कि पढ़ाई में भी हर फील्ड में महिलाएं उडुपी में मर्दों की तुलना में काफ़ी आगे हैं, और वो ये एक मार्गदर्शक बनती हैं जो उत्तर भारत के जो मर्द हैं, जो सोसाइटी है उसके लिए, कि किस तरह से विकास किया जा सकता है और किस तरह से फैमिली को भी जोड़ के रखा जा सकता है। सलमान रावी, BBC उडुपी, कर्नाटका।
और अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां गृह मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया गया है कि वामपंथ उग्रवाद प्रभावित छत्तीसगढ़ को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में माओवादी मामलों के विशेषज्ञ इस बात से हैरान है कि माओवाद प्रभावित राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों में सबसे अधिक बजट का आवंटन उत्तर प्रदेश को किया है। बजट का यह आवंटन ऐसे समय में लगातार जारी है जब देश के सर्वाधिक माओवाद प्रभावित जिलों में उत्तर प्रदेश का एक भी जिला शामिल नहीं है। यहां तक कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश में माओवादी हिंसा की एक भी वारदात नहीं हुई है। इसके उलट केंद्र सरकार द्वारा देश के जिन 35 जिलों को सर्वाधिक माओवाद प्रभावित माना जाता है उन्हें सबसे कम बजट आवंटित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवान पिछले कई सालों से आधुनिक हथियार और बुलेटप्रूफ जैकेट से लेकर हेलमेट तक की मांग करते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अनसुनी हैं। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक RK विज,
समय समय पे खरीदते रहते हैं, जरूरत है केवल उसके यूज का प्रैक्टिस मिलाने की, जो है वो प्रॉपरली यूज हो। पैसा ग्रेजुअली बहुत कम हो गया है तो सभी का कम होता जा रहा है, वो उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बजट कभी भी अपने को ये चीजें जो खरीदनी होती है ना फोर्सेस के लिए, वो कभी भी उसकी कमी के कारण ना खरीदनी है, ऐसा नहीं होता।
हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि बस्तर में माओवादियों से लड़ रहे जवान संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं।
बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान लगातार बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की रमन सरकार जवानों की इस मांग के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है।
शैलेश नितिन त्रिवेदी के उलट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक श्रीचंद सुंदरानी का दावा है कि सरकार माओवादी मोर्चे पर बजट को लेकर कोई समझौता नहीं कर रही है।
मुझे तो लगता है पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए और कहीं आज नक्सल मोर्चे में जिस प्रकार हमारे जवान लड़ रहे हैं काफी आज भी सफलता मिली है और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं।
लेकिन इन दावों से अलग माओवाद प्रभावित राज्यों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के मद में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक बजट का आवंटन किन कारणों से लगातार जारी है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार रुचिर गर्ग,
नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण का ये आंकड़ा इस मोर्चे पर सरकार की
अपनी प्राथमिकताओं की पुष्टि नहीं करता है। ऐलान है कि 2022 तक नक्सलवाद का सफाया कर देंगे, लेकिन लगता यह है कि इस लक्ष्य का आर्थिक भार केंद्र ने राज्यों पर ही डालकर छुट्टी पा ली है।
शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन माओवादियों से लड़ने के लिए पुलिस के लिए आधुनिक हथियार और सुविधाओं का विस्तार तो उन इलाकों में ही होना चाहिए जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और श्रोताओं, ऑस्ट्रेलिया में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने आज 3 और स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं। पूरा ब्यौरा गोल्ड कोस्ट से रेहान फजल की जुबानी।
राष्ट्रमंडल खेलों में आज का दिन भारत के लिए सबसे अच्छा दिन रहा। भारत ने दिन भर में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। सुबह सुबह मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को सोने का पदक दिलवाया। इसी स्पर्धा में हीना सिद्धू ने रजत पदक जीता। मनु ने शुरू से ही लीड बनाई, अंत में उनमें और दूसरे प्रतिभागियों के बीच पूरे 6 अंकों का अंतर था, जो कि निशानेबाजी में बहुत बड़ा अंतर माना जाता है। मेडल सेरेमनी के बाद मैंने मनु से पूछा कि आपके लिए तो गोल्ड कोस्ट में केक वॉक थी।
नहीं, I was expecting it more tough, but it was like okay.
लेकिन इतनी ज़्यादा लीड थी, आपको कोई संदेह नहीं था शुरू से कि आप मेडल जीते?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो I just focus on my shots.
हिना सिद्धू शुरू में 7वें स्थान पर चल रही थी, लेकिन आखिर में कई बुलसाई लगाकर वो दूसरे स्थान पर पहुंच गईं। बाद में उन्होंने बताया कि उनकी उंगली में चोट लगी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रिगर चलाने में दिक्कत हो रही थी।
पिछले एक हफ्ते से थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। देयर वाज अ प्रीवियस इंजरी दैट हैड फ्लेयर्ड अप अ लिटिल, सो आई वाज टेकिंग लॉट ऑफ फिजियोथेरेपी। आई वाज जस्ट 1 वीक बैक, आई वाज हैविंग अ बिट ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन इन माय फिंगर।
रवि कुमार ने भी 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए कांस्य पदक जीता।
हाँ, मैं और आज अच्छा कर सकता था, लेकिन जितना मैं हो सका मैंने आज किया, और क्वालिफिकेशन ओके था, लेकिन मैं फाइनल से थोड़ा सा खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में 4th था, इसमें मैंने ब्रॉन्ज मिला है।
उधर भारोत्तोलन में महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में पूनम यादव ने भारत को एक और सोने का पदक दिलवाया। उन्होंने कुल 222 किलो वजन उठाया। ये भारत का भारोत्तोलन में 5वां स्वर्ण पदक था। हॉकी में भारत ने एक रोमांचक मुकाबले में वेल्स को 4-3 से हरा दिया। शाम होते होते भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने भी अपने से ऊंची रेट की जाने वाली सिंगापुर के टीम को हराकर भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या 7 कर दी। एथलेटिक्स में भारत को आज कोई पदक नहीं मिला, लेकिन बॉक्सिंग में मैरी कॉम स्कॉटलैंड के बॉक्सर को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। विकास कृष्णन ने भी ऑस्ट्रेलिया के कैंपबेल को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, लेकिन महिला 69 किलो में लवीना बोरगोहन अपना क्वार्टर फाइनल मैच हार गई। कल बैडमिंटन मिक्स टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। रेहान फतल, BBC गोल्ड कोस्ट।
और राष्ट्रमंडल खेलों के बाद बात क्रिकेट की, IPL की। IPL में क्या हो रहा है बताने के लिए आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आदेश जी, आज क्या हलचल है?
जी संदीप जी, आज थोड़ी देर पहले IPL का आज का पहला मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें किंग्स इलेवन पंजाब ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 6 विकेट से हरा दिया। किंग्स इलेवन पंजाब के सामने जीत के लिए 167 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया। इस जीत में जमकर चमके लोकेश राहुल, जिन्होंने 51 रन बनाए, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने अपने पहले 50 रन केवल 14 गेंदों पर बना दिए, और ये IPL के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले सुनील नारायण और यूसुफ पठान ने 15-15 गेंदों पर अर्धशतक जमाया था। आज दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच थोड़ी देर में शुरू होगा, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।
बहुत शुक्रिया आदेश जी। और इससे पहले कि कार्यक्रम का समापन करें, चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं मानसी दास से।
BBC समाचार। सीरिया के विद्रोहियों के कब्जे वाले डोमा शहर में संदिग्ध जहरीली गैस के हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना की जा रही है। इस हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी के अधिकारियों का कहना है कि मीन्स्टर शहर में पैदल चल रहे कुछ लोगों को वैन से कुचलने वाले व्यक्ति का इस्लामी चरमपंथियों से कोई नाता नहीं है। पश्चिमी जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त का एक बड़ा बम नाकाम करने के लिए अधिकारियों ने खास अभियान शुरू कर दिया है। बीबीसी समाचार।
और कुछ ही देर में बजने वाले हैं भारत में रात के 8, वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अनंत प्रकाश ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।